पिता परमेश्वर, बहुत ही नम्रता के साथ और दीनता के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, दुनिया में रहते हुए आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा, आप अपनी पवित्र उपस्थिति अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं और आप हमारे साथ में हैं, और आपने हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता के रूप में दिया। हम इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। होने देखिए प्रभु, जब हम आज आपके वचन में से देखते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, हमारे हृदय प्रभु हमारे हृदय से बातचीत करें और अपने जीवन को मूल्यांकन करने पाएं, अपने जीवन जीने के तरीके को मूल्यांकन करने पाएं, अपने जिस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते हैं, दिन हमारा गुजरता है, उस बात को हम मूल्यांकन करने पाएं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं नहीं वरन आप मेरे द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हमारे बीच में विद्यार्थी भी हैं और हमारे बीच में काम करने वाले लोग भी हैं, दोनों प्रकार के जो समुदाय हैं हमारे बीच के अंदर, काम करने वाले भी और विद्यार्थी भी। कल्पना करें, सोचिए आप, हम सुबह उठे, जैसे हम हर दिन रात को सोते हैं, हम सुबह उठे और सुबह उठकर हम जिस हालत में हम रात में सोए थे, और जब जिस हालत में हम रात में सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो हमारी हालत कुछ और होती है ना। तो सोचिए जिस हालत में हम सोए और जिस हालत में हम उठे, और सोचिए कुछ इस प्रकार से आप, हम उसी हालत में, हम ब्रश करना भूल गए, हम खाना खाना भूल गए, हम तमाम जो काम करते हैं उनको करना भूल गए, और उसी हालत में हम अपने अपने स्कूल और अपने अपने जॉब पर, अपने अपने काम पर चले जाएं, तो कैसा होगा? लोग बोलेंगे अरे भैया क्या हो गया है। या सोचें आप भाई, चर्च में सुबह सुबह कलीसिया में आए और सुबह सुबह कलीसिया में उठते ही जिस हालत में आप थे, उसी हालत में आप कलीसिया के अंदर, हम सब आ गए यहां पर, हम सब एक दूसरे को देखकर बोलेंगे भैया ऐसे भी दिखते हो। ये हो नहीं सकता है ना, ऐसा होता नहीं है और ऐसा कभी हम होने भी नहीं देंगे इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमारे जीवन के अंदर ये बात ढल गई है कि सुबह उठकर हमें इन इन कार्य को करना है और उन कार्य को हम करते हैं। लेकिन हम अक्सर, हो सकता है हम भाई तमाम चीजों को करते हैं, लेकिन तमाम बातों में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम उन तमाम बातों के अंदर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम सारी चीजों को करते हैं लेकिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, और आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं वह है प्रार्थना। क्या है, क्या है? और प्रार्थना जो है हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है प्रार्थना हमारे जीवन में? बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जिस प्रकार से इस फोन के लिए चार्जर बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप? अगर फोन को चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम सबके पास स्मार्टफोन है, फोन है, हम सब फोन इस्तेमाल करने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी फोन चाहिए होता है, ठीक है। अगर फोन को चार्ज नहीं करेंगे तो फोन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फोन एक खाली एक भाई यंत्र के रूप में रह जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के भक्त हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यदि हम यीशु मसीह के बेटे हैं, यदि हम यीशु मसीह की बेटी हैं, यदि हम यीशु मसीह के द्वारा चुन लिए गए हैं, तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? चाहे हम व्यस्त हों, चाहे हम कोई से भी काम कर रहे हों, चाहे हमारा जो जीवन का जो भी दिनचर्या का जो समय है वो कितना भी हम कार्य के अंदर हमने उसको बांट रखा हो, हम कैसी भी स्थिति में रहें, हम प्रार्थना जरूर। और आज इस खंड को हम देखेंगे, इसके अंदर तीन लोगों की प्रार्थना को देखेंगे। कितने लोगों की? तीन लोग इसके अंदर प्रार्थना जो कर रहे हैं, और तीनों लोगों का प्रार्थना करने का तरीका अलग है। और जब तीन लोगों की प्रार्थना को देखेंगे, हम अपनी प्रार्थना को भी देखें कि भी हमारा प्रार्थना करने का तरीका कैसा है, हम प्रार्थना कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ निकालें उसका लुका, उसका 18वां अध्याय, और बाइबल को खोल के रखें, बाइबल खोल के रखें, बाइबल के अंदर आप उंगली लगा के रखें। लुका उसका 18वां अध्याय, और यहां पर 18 पद से कोई पढ़ दीजिए मेहरबानी से। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह ने यहां पर बोला है कि भी शुरुआत जो हो रही, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य क्या करना है, नित्य, नित्य का मतलब क्या है, क्या करना, नित्य मतलब लगातार प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, और क्या नहीं करना, हियाव ना छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, हियाव को दूसरे शब्द में बोला जाए हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, हियाव मत छोड़ना, और क्या करना मतलब प्रार्थना करना, क्या करना है। और यदि इससे पहले देखिए, फिर यहां पे शब्द आया, मतलब इससे पहले यीशु मसीह ने कुछ बताया है। यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं कि भी क्या कहते हैं, यीशु मसीह यहां पर एक बात बता रहे हैं अपने राज्य के आगमन के बारे में, बात बता रहे हैं, और भाई बता रहे हैं कि भी जब वो दिन आएगा, प्रभु का दिन आएगा, जब वो समय आएगा, तो भाई जो जिस हालत में उसी हालत में भाई पीछे ना जाए, ऐसा ना करे, और वो क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जिस हालत में उसी हालत में वो रहे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि फिर उसके विषय में कि नित प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। यहां पर एक बात कह रहे हैं कि भाई लगातार बिगर हारे, बिगर हिम्मत हारे, भाई क्या करना, हमें लगातार क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना हम सबकी क्या है रोहित भाई, ताकत क्या है, जैसे कोई जिम जा रहा होता है उसको प्रोटीन की जरूरत होती है ना, अच्छी डाइट की जरूरत होती है, उसी प्रकार हम मसीह लोगों के लिए हमें प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और देखो आगे फिर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं, एक घटना बता रहे हैं, और उस घटना के अंदर देखिए क्या शुरुआत होती है। ठीक है, यहां पर एक न्याय, न्याय समझते हैं जैसे भाई कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, और कोर्ट के अंदर भाई जो जज होते हैं, ये एक जज है, और ये जो जज है, जैसे हमारे यहां पर कौन सा कोर्ट है भाई, साकेत का कोर्ट है, और हमारे यहां पर ये जो इंडिया गेट के यहां पर कौन सा कोर्ट है, पटियाला कोर्ट है यहां पर। ठीक है, उसी प्रकार से उस समय में एक कोर्ट है, और कोर्ट के अंदर कौन है, एक जज है, और जज मतलब अपने भाई जब अपनी कुर्सी में बैठा है तो मतलब राजा से कम नहीं है वो, समझ रहे, क्योंकि उसके पास पूरा अधिकार है किसका केस जितवाए और किसका केस हरवा दे, किसका केस ले और किसका केस। और यहां पर इस न्याय के बारे में, इस जज के बारे में इस प्रकार से बता रखा है कि भाई ये क्या है, ये ना तो किससे डरता है, परमेश्वर से डरता, किससे डरता, ना ही ये परमेश्वर से डरता है और ना ही किससे डर रहा है भाई, इसके अंदर किसी का डर नहीं है, ये किसी का डर मानने वाला नहीं है, और ये जो व्यक्ति है ये घूस लेने वाला व्यक्ति है, ये भाई लोगों से पैसे लेने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और भाई जो इसको पैसा देगा, जो इसको भी पैसे देगा, जो भाई इसके अनुसार को बात करेगा, उसके ही केस को लेगा, उसके केस का आगे कार्यवाही करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। ये ना परमेश्वर से डरता है, ना इंसानों से डरता है, ना परमेश्वर की परवाह कर रहा है, और ना ही ये किसकी परवाह कर रहा है, इंसानों की परवाह कर रहा है। लेकिन यहां पर एक एक, एक किरदार यहां पर आता है, आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कौन है, विधवा है, कौन है, और पहली जो 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 कोर्ट है, जब पुराने समय का हम देखें जिक्र करें, पहली शताब्दी का हम जिक्र करें, कोर्ट मतलब आदमी, औरत का कोई काम नहीं है वहां पर, किसका काम नहीं है, औरत का कोई काम नहीं है, औरत कोर्ट में नहीं जा सकती है, वो सारा आदमी का काम है, और औरत की जो समय में महिलाओं की, स्त्रियों की स्थिति, जैसे मैंने पहले ही बताया कई बार कि वो ना उनकी कोई गवाही मान्य नहीं रखती थी, इवन लोग ऐसी प्रार्थना करते थे कि प्रभु ईश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे भाई औरत नहीं बनाया, स्त्री नहीं बनाया, ऐसे लोग प्रार्थना करते थे, समझ रहे हैं आप। अभी जो स्त्री है, ये जो विधवा है, इसका ना तो पति है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये पता चल रहा है ना तो इसका पति है, ना इसका कोई भाई है, ना इसका कोई बेटा है, और उसके जीवन में एक ऐसी घटना आ गई है जिसमें वो क्या कर रही है, यहां पर लिखा है उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आ आकर क्या कर रही थी, मतलब क्या है, मतलब बार बार आ रही, क्या कर रही है, बार बार आ रही, हिम्मत नहीं हार रही है, हियाव नहीं छोड़ रही है, ये लगातार आ रही है, किसके पास आ रही है, उस न्याय के पास, उस जज के पास, जो परमेश्वर का डर नहीं मानता, और किसका डर नहीं मानता, मनुष्य का डर नहीं मानता, ये किसी का डर मानने वाला नहीं है, लेकिन ये जो विधवा है, ये जो विधवा है उससे नहीं डर रही है, क्या नहीं कर रही, वो उसकी परवाह नहीं कर रही है, वो उसकी परवाह नहीं कर रही कि वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार से हो सकता है, अलग अलग प्रकार से इससे व्यवहार कर रहा हो, लेकिन इसने हिम्मत नहीं, इसने हियाव नहीं छोड़ा। आगे देखो क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक मुहावरा है, कौन सा है मुहावरा, नाग में दम करना, कौन क्या करना, नाग में दम। सोचो इतनी बार आ गई है ये, मतलब एक बार दो बार तीन बार चार बार नहीं, इसके मन के अंदर एक बात ठानी पड़ी है, जो बात जिस बात से ये जो भाई परेशान है, ये इसके जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है। कोई इसको तंग कर रहा है, कोई इसको परेशान कर रहा है, और उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, उसके पास वही एक हल हो सकता है उसकी, भाई क्या कहते हैं, जमीन जायदाद को उसने अपने कब्जे में कर रखा, उस मुद्दे ही ने हो सकता, कोई कुछ पैसे ले लिए हैं जो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बता रखी, लेकिन कोई ऐसी बात है जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके जीवन के भी आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसने हिम्मत नहीं हारी है, उसने हियाव नहीं छोड़ा है, लगातार आकर क्या कर दिया इसकी नाक में, भाई इसने खुद ही बोल दिया कि भाई इसने क्या कर दिया मेरी नाक में, हिम्मत नहीं आ रही। कितनी हिम्मत नहीं आ रही इस विधवा ने, हिम्मत नहीं आ रही, वो खुद अपने अंदर सोच रहा है, अपने अंदर बात कर रहा है, भाई मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं मनुष्य से डरता हूं, लेकिन इस विधवा को देखो ना, इसके आगे ना पीछे, इसने मेरी नाक में क्या कर दिया है भैया, इसलिए मैं क्या करूं, पहले क्या करूं, पहले इसी का चुका दो, क्योंकि इसने मेरी नाक में क्या कर दिया। ये पहली प्रार्थना यहां पर देखते हैं इस विधवा की, और ये विधवा ने हिम्मत नहीं आ रही है, लगातार ये प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, इसके जीवन से पता चलता है। और यहां पर यीशु मसीह आगे एक बात कहते हैं,
प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसके दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा, मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा।
ठीक है, यहां पर एक बात, एक शब्द आया, चुने हुए का न्याय, हम कौन है उसके, चुने हुए हम क्या है उसके, जब चुनने का मतलब क्या, बाइबल क्या बताती है हम क्या है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, चाहे हमारी, हम जो यहां बैठे हैं, हम चाहे कितनी भी उम्र के हों, हम उसकी बेटी हैं, हम उसके बेटे हैं, हम राजकुमार हैं, हम राजकुमारी हैं, उसने हमको अपना लेपालक, उसने हमको लेपालक नहीं बना लिया, उसने हमको वारिस बना लिया है, वो हमारा महाराजा है, वो हमारा परमेश्वर है। वो ये बोला, ये जो अधर्मी है, ये जो मेरा डर नहीं मानने वाला है, इंसान का डर नहीं मानने वाला, ये जो व्यक्ति है, ये जब ये अनुग्रह कर रहा है और विधवा का न्याय चुका रहा है, तो मैं अपने चुने हुए लोगों का न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा, मतलब जो मुझसे वो दुहाई दे रहे हैं, जो मुझसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मुझसे रात दिन लगातार जो मुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो हियाव नहीं छोड़ रहे, मैं उनका न्याय को क्यों नहीं चुकाऊंगा। सोचें, एक सवाल यहां पर हम सबके लिए, जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब किसी बात के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है हम घर में अपनी पत्नी के लिए, या अपने पति के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या अपने परिवार के लिए, या फिर अपने भाई भविष्य की बातों को लिए, वर्तमान की बातों के लिए, जिस बात से भी हम होकर जा रहे हैं, जिस बात से भी, जिस समस्या से, जो भी बात ने हमको विचलित कर रखा है, जो भी बात ने हमको परेशान कर रखा है, जो भी बात ने हमको दुखी कर रखा है, सोचिए इस बात को कि जब हम उससे, क्या उससे लगातार बिगर हियाव हारे, बिगर हिम्मत हारे, क्या उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, या हमारी हिम्मत हार गई है, हमने हियाव छोड़ दिया, वो प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। और यहां पर ये पहली प्रार्थना, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, ये प्रार्थना, भाई क्या प्रार्थना, कैसी प्रार्थना करनी है, हमें नित्य प्रार्थना करनी है, कैसी प्रार्थना करनी है, बिगर हिम्मत हारे प्रार्थना करनी है, कैसी प्रार्थना करनी है, मुझे नहीं पता आप में तो काफी लोगों को मुझे पता है कैसा आपके अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं, किस बात के लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे काफियों को पता है। मैं आपको सिर्फ ये उदाहरण देना, मैं आपको सिर्फ यही उत्साहित करना चाहता हूं, हिम्मत मत हारें आप, क्या ना करें, हिम्मत मत हारें आप, हियाव ना छोड़ें आप। आपकी जो भी प्रार्थना है, उस राजा ने, महाराजा ने सुन ली है, वो सुन रहा है, वो जानता है, हमारी प्रार्थना करने से पहले वो जानता है, हमारी हमारी अंदर के दर्द को वो जानता है, हमारे अंदर की बातों को वो जानता है। हिम्मत मत हारें, लगातार उसे क्या करें, लगातार उसे क्या करें। ये विधवा ने जा जाकर उसकी नाक में दम कर दिया और उसने उसके न्याय को क्या कर दिया, उसके न्याय को क्या कर दिया, उसने उसके न्याय को क्या कर दिया, चुका दिया। और मेरी यही आपसे प्रार्थना है, लगातार प्रार्थना करें, बिगर हियाव छोड़े क्या करें, प्रार्थना करें। हम उसके बच्चे हैं, उसके बन गए, हम उसके चुने हुए। यहां पर एक बात आ रही है कि हम उसके क्या है, चुने हुए। उसने हमको चुन लिया है, अपना कीमती लहू बहाकर उसने हमको अपनी बेटी, हमको अपना बेटा बना लिया है। यह पहली प्रार्थना जो हमको बताती है कि हमें लगातार किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब यह बात नहीं है कि भी आप जहाज के लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझको जहाज दे दे, आप लगातार प्रार्थना कर रहे प्रभु मुझे जहाज दे दे, जहाज दे दे, और लगातार प्रार्थना कर रहे। जहाज क्यों देगा वो, जब जहाज की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे आप भाई। हो सकता है अपने घर की किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर की जो बात जो आपके आपके भाई हिसाब से है, आपके लेवल में है, प्रभु अपने समय पे सुनेंगे। वो उसके समय का इंतजार करना है, वो हमारे समय पे नहीं सुनेंगे, वो अपने समय पे सुनेंगे। और उसकी समय का में क्या करना है, और क्या करना है, हिम्मत हार जानी है, क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, हियाव नहीं छोड़ना है, लगातार क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये मत सोचे परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर ने सुन ली है, परमेश्वर अपने समय का इंतजार कर रहा है और उस समय पे वो उसके क्या करेगा, उत्तर देगा। हम सब अपने जीवन से कह सकते हैं कि हमने कई कई अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है, हम सबकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, अलग 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 विषयों को लेकर जब उन्हें प्रार्थना करा। दूसरी चीज जो हम देखेंगे, दूसरी जो प्रार्थना है, यहां पर एक अलग ही प्रकार की प्रार्थना हो रही है। दूसरी जो प्रार्थना हम देखेंगे, हम 9 से पढ़े यहां पर, ठीक है, यहां पर बता रहे हैं कि भी एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपने पर किसके पर भरोसा कर रहे हैं, किसके पर कर रहे हैं, और क्या अपने आपको क्या बता रहे हैं, हम क्या है, अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं और अपने आपको क्या बता रहे हैं, धर्मी है, और दूसरों को क्या बता रहे हैं, दूसरे को। तीन बातें यहां पर, इस प्रकार तीन प्रकार के, तीन भाई तीन बुरी बातें इनके अंदर, तीन अजीब सी बातें, अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने आपको धर्मी बता रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। अब एक कहानी यीशु मसीह बता रहे हैं, दृष्टांत यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक जो दूसरी जो प्रार्थना है, किसकी प्रार्थना है, इस फरीसी की, किसकी प्रार्थना है, ये जो फरीसी है, ये उसमें का भाई धर्म ज्ञान को देने वाला, उसमें का भाई ऐसा व्यक्ति था जो भाई ऊंचे ऊंचे पद पे बैठने वाला, लोगों के बीच में सम्मानित व्यक्ति है, और भाई वचन का भाई शिक्षा देने वाला ये व्यक्ति है। और यहाँ पर जो इसकी प्रार्थना जो शुरू हुई है, प्रार्थना बड़ी अच्छी शुरू हुई है, क्योंकि इसने जो भाई इसने क्या करा है, इसने पहले परमेश्वर का नाम लिया, किसका नाम लिया है, हे परमेश्वर, क्या बोला इसने, ठीक है, क्या बोला इसने, हे परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के ना आपके नाम से हम आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे साथ में, कुछ इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। और भाई उसके बाद इसने हे मां, हे परमेश्वर बोला, और हे हमारे, हे परमेश्वर बोलने के बाद अभी प्रार्थना कर रहा है, बस शुरुआत का इसने हे परमेश्वर बोला, बाकी जो प्रार्थना कर रहा है, खुद की प्रार्थना खुद के लिए कर रहा है, खुद से कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखो कैसे पता चलता है, देखो यहां पे बोला उसने, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्या करता हूं तेरा, धन्यवाद। भाई हम सब धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये धन्यवाद किसी अलग बात के लिए कर रहा है, ये बोला मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा भाई प्रार्थना कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर नहीं करता, क्या बोल रहा है, मैं दूसरे मनुष्य के समान क्या नहीं करता, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर नहीं करता। फिर वो बोल रहा है अन्यायी और व्यभिचार नहीं, व्यभिचारी नहीं, दूसरी बात बोल रहा है, अन्यायी नहीं हूं और क्या नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस दूसरा जो व्यक्ति है बोला इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में दो बार क्या करता हूं, ये साल में एक बार उपवास करने का इनका एक वो था, लेकिन ये बता रहा है मैं परमेश्वर सप्ताह में क्या करता हूं, दो बारी अपनी सब कमाई का, जो भी छोटी बड़ी जो भी कमाई होती है सारी कमाई का क्या करता हूं मैं, दशमांश देता हूं। हे परमेश्वर अच्छा था। उसके बाद जो शुरू हुआ है, उसके बाद जो है खुद की प्रार्थना किससे कर रहा है, खुद अपने आप को अच्छा लगाने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, भाई खुद को अच्छा लगे इस बात के, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। तो कुछ चुंगी लेने वाला अगर हम पढ़ेंगे ना, वो कुछ दूर खड़ा है, मतलब तीन जगह होती थी जब होली 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 प्लेस होली, फिर क्या कहते हैं पवित्र पवित्र जगह होती थी, फिर पवित्र जगह होती थी, और एक और जो जगह होती थी जहां पर क्या कहते हैं जो दूसरे लोग जो आकर खड़े होते थे, और ये चुंगी लेने वाला जो खड़ा है ये वहां पर जगह खड़ा है, और ये जो खड़ा हुआ है ये फरीसी, ये पवित्र भाई जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां पर करीब में खड़े होकर ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है। इसको पता कौन सी प्रार्थना कहते हैं, खुद को, इसको कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं खुद को धर्मी ठहराने वाली प्रार्थना। क्या करने वाली, खुद को धर्मी ठहराने वाली। और सोचें ये एक प्रकार की प्रार्थना हो सकता है, हम भी कुछ हमारी भी हो सकता है ऐसी इस प्रकार से प्रार्थना हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कईयों को लोगों को ये प्रार्थना करते सुना है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं ऐसी ऐसी, ठीक है प्रभु, ये जो भाई है ये जो बहन है इसके अंदर ये बेकार की बातें हैं, इस प्रकार की बात इसके अंदर है, इस प्रकार की बात इसके अंदर तो निकाल दे। और वो स्पेसिफिक मतलब बहुत ही डायरेक्ट इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, और बड़ी वो लगता नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वो लग रहा है भड़ास निकाल रहे हैं प्रार्थना के अंदर। क्या कर रहे हैं, जो अंदर भड़ा पड़ा है ना उस व्यक्ति के लिए कहां पर निकाल रहे हैं, प्रार्थना के अंदर, किसके अंदर निकाल रहे हैं, प्रार्थना के अंदर। और सोचे यहां पर हमको इस बात से बचना है कि जब हम प्रार्थना करें हम खुद को धर्मी ठहराने वाली प्रार्थना ना करें, खुद को धर्मी ठहराने वाली बातों को ना करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है मूर्ख नहीं है। परमेश्वर जो हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे हृदय को जान, हमारे हृदय के अंदर जानता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, हमारे हृदय से भी क्या निकलने वाला है, मन भाई किस प्रकार की प्रार्थना निकलने वाली है, उन सारी बातों को हमारा परमेश्वर जानता है। और यहां पर जो दूसरी जो प्रार्थना हो रही है खुद को धर्मी ठहराने वाली प्रार्थना हो रही है। सोचें क्या हम जब प्रभु के सम्मुख आते हैं या जब उपवास रखते हैं, सोचो कैसे क्या हमारे अंदर ये वाली भावना आती है, हाँ मैं तो उपवास रहा हूं, मैं तो क्या हो गया हूं भाई, पवित्र पवित्र जैसी फीलिंग आ रही है, धर्मी वाली फीलिंग आ रही है, क्या ऐसी भावनाएं तो नहीं आती है जब उपवास रखते हैं, या जब भाई अपनी कमाई का दशमांश अपनी कमाई का भाग देते हैं तो ये तो नहीं आता, हाँ मैं अपनी कमाई का भाग दे रहा हूं और इस बात का ध्यान रखते हैं, अरे ये नहीं दे रहा, ये बहन नहीं दे रही, ये भाई नहीं दे रहा, ये परिवार नहीं दे रहा। प्रभु को धन्यवाद हमारी कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं और देने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे जो परिवार हैं जवान हैं अपनी कमाई का भाग बलिदान पूर्वक और छुपके से, मैं विश्वास करता हूं खुद को धर्मी ठहराकर इस प्रकार से नहीं देते हैं कि भी क्या कहते खुद को धर्मी, भाई खुद अपने आप के अंदर धर्मी महसूस करें, नहीं हमें सोचें इस चीज को देखें, हमें इस चीज से सावधान रहना। और यहां पर जो बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि भी क्या कहते हैं मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मतलब ये दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा, सामने वाला व्यक्ति ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। और हमारी जो प्रार्थना होनी चाहिए, पता कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, बाइबल आधारित प्रार्थना होनी चाहिए। कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, बाइबल आधारित प्रार्थना होनी चाहिए, जैसे बाइबल हमको सिखाती है। हे हमारे पिता की प्रार्थना देखें उसके अंदर कैसी प्रार्थना है, ठीक है, जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जब यीशु मसीह ने जब उसके अंदर प्रार्थना करा यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के अंदर, उसके अंदर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करा है, देखेंगे आप, है ना, जब यीशु मसीह भाई आप मरकुस में पढ़ेंगे आप देखेंगे यीशु मसीह जो प्रार्थना करने जा रहे हैं भोर को अंधे दिन निकलने से पहले क्या करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता ना चले, ठीक है। कुछ लोग जो प्रार्थना जो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, भाई लोगों को पता चल जाए अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। कई लोग होते हैं जब उनको भाई किसी खाने के लिए भी प्रार्थना कर दी जाती है, खाने के लिए प्रार्थना कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। एक जगह हम मीटिंग के अंदर गए थे, वहां पर खाने के लिए प्रार्थना दी, ठीक है, शाम की प्रार्थना दी, और उसने कितने 20 मिनट की प्रार्थना करी, सब सोच रहे भैया प्रार्थना खत्म हुई, लेकिन उसको दिखाना था कि भी उसको क्या आती है, प्रार्थना आती है। जब प्रार्थना का जब दिया जाता है, जैसे भी उदाहरण के लिए किसी को दी जाती है, भी पापा की क्षमा के लिए प्रार्थना करी करें, और लेकिन जो प्रार्थना कर देते हैं सबके लिए प्रार्थना कर देते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, इसके लिए प्रार्थना कर देंगे, या हो सकता है कि भी क्या कहते उनको प्रार्थना करना नहीं आता है, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है भी दिखाने के लिए, हाँ भैया देख लो मेरे को भी प्रार्थना करना क्या हो गया, आ गई मेरे को प्रार्थना कर, सोचे हैं। और यहां पर जो बात जो सावधान कर रही है, इस प्रकार की प्रार्थना से हमें क्या रहना है, सावधान रहना है, क्या रहना है, सावधान रहना है, हमें अगर प्रार्थना करना है खुद के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना करना है, क्या करना है, हम अपने जीवन की कमियों को जानते हैं, मैं अपने जीवन की बहुत सारी कमियों को जानता हूं, मैं ना कि दूसरों की कमियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करूं, भाई प्रभु इसकी कमी को दूर कर दे, इसको दूर कर दे, नहीं, मुझे किसकी कमी को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है, खुद की। और जो कहते हैं खुद को धर्मी ठहराने वाली प्रार्थना, सावधान रहे भैया, खतरा है यहां पर, ठीक है, ये हमें तो खुश कर सकती है लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं, हमें अंदर से भाई सुकून दे सकती है, हाँ मैं भाई अंदर से बड़ा अच्छा लग गया, भाई प्रभु को वो भेंट स्वीकार नहीं होगी। इसलिए जब भी प्रार्थना करें कैसे करें, कैसे प्रार्थना करें, खुद को धर्मी ठहराने वाली प्रार्थना करें, कैसी प्रार्थना करना है, बाइबल आधारित प्रार्थना करना है, बाइबल को प्रार्थना करना है, ठीक है। और तीसरी जो प्रार्थना है, यहां पर हम जो तीसरी प्रार्थना देखेंगे वो यहां पे शुरू होती है 13 से, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर जो चुंगी लेने वाला है वो दूर खड़ा हो गया, कहां पे खड़ा हो गया, ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां पर इसने अपने आप को योग्य नहीं समझा कि वो परमेश्वर के सम्मुख आ सके, प्रभु के सम्मुख खड़ा हो सके, वो ये नहीं दिखा रहा है, उसको कोई उत्तम जगह नहीं चाहिए, वो एक जगह खड़ा होकर दूर खड़ा हो गया है, और सर की ओर उसने आंखें उठाना भी ना चाहा, क्या नहीं करा इसने, उसने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि वो सर को ऊपर उठाकर अपने क्या करते, एक तरीका होता था उनका प्रार्थना करने का जिसमें अपने सर को उठाकर खड़े होकर प्रार्थना करते थे, लेकिन इसने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा, प्रभु उसके अंदर को जानता है, अंदर जो चल रहा है, अंदर जो प्रार्थना है वो उसको प्रभु को पता है, उसने सर की ओर आंखें ना उठाई वरन कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, क्या बोला, हे प्रभु मैं क्या हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर क्या कर, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर क्या कर तू, दया कर, छाती पीट पीट कर, इससे सोचिए किस, एक कल्पना करें कैसा किस प्रकार से कर रहा होगा, वो रो रहा होगा, हो सकता है वो छाती पीट पीट के रो रहा अपने पापों के लिए। जब दाऊद को ये पता चला कि उसने पाप किया है, वो भाई भजन लिख रहा है, वो बता रहा है, वो रो रो कर सुबह सुबह कर भाई अपनी खटिया पर भाई करवटे ले लेकर सुबह सुबह कर वो प्रार्थना कर रहा है, वो रो रो के प्रार्थना कर रहा है। कुछ इसी प्रकार से यहां पर ही जो चुंगी लेने वाला है, ये सुबह हो सकता है सुबह सुबह कर रो रो कर ये अपनी छाती पीट पीट कर, एक तरीका होता था, अब ये मैं नहीं कह रहा अभी अपनी छाती पीट पीट कर प्रार्थना करें, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, आप भाई बहुत नम्रता के साथ अपने अंदर से अपने आप को मूल्यांकन करते हुए, अपने आप को जांचते हुए ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हे प्रभु हे परमेश्वर मुझे पापी पर क्या कर तू, दया कर, मुझे पापी पर दया कर। पौलुस बोलता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, पौलुस ये बोलता है। आपको पता है जब यीशु मसीह जीवन में आते हैं, जब यीशु मसीह जीवन के अंदर आ जाते हैं, जब यीशु मसीह किसी के ऊपर दया करते हैं, जब यीशु मसीह किसी के जीवन में किसी के परिवार में जब वो आ जाते हैं, जो सबसे पहली बात उसको जो पता चलती है वो ये पता चलती है कि वो पापी है, क्या पता चलती है, वो पापी है, ये पता चलती है कि मैं पापी हूं। और ये जो चुंगी, ये जो फरीसी है, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता इसके इसके जीवन में यीशु मसीह नहीं आए, इसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, इसलिए इसकी प्रार्थना करने का तरीका खुद के लिए था, दूसरों को बुरा और खुद को अच्छा करने वाला, भाई मैं अच्छा हूं और सामने वाला क्या है, बुरा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं, तो पहली बात जो हमको पता चलती है कि मैं क्या हूं, पापी हूं, मुझ पर क्या करे तू, दया कर, मुझ पर दया कर। और देखो आगे क्या लिखा है 14 में,
मैं
ठीक है, और यहां पर जो प्रार्थना है, एक चीज क्या कहते हैं, उदाहरण, जो सबसे अच्छा जो उदाहरण हमको मिलता है, पता कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करी। यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी, लगातार प्रार्थना करते थे वो, सुबह उठकर आकर देखेंगे, सुबह भोर को उठते ही वो प्रार्थना करते थे। अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी इन्होंने, लोगों के लिए प्रार्थना करी, आने वाले लोगों के लिए जो हमारे लिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करी। और जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दुख को सह रहे थे, जो हमारे पापों के लिए वो जो पीड़ाओं को सह रहे थे, अपना बहुमूल्य जब वो लहू को बहा रहे थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं धर्मी हूं, ये पापी है, देखो पापी लोग मुझ पर क्या अत्याचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला है। यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए, यीशु मसीह क्रूस पर है, उनका लहू बह रहा है, उनकी मांस अंदर का दिख रहा है, उनकी चर्बी अंदर की दिख रही है, उनकी हड्डी अंदर की दिख रही है, वो दर्द दर्द से भरे हुए, पीड़ा से भरे पड़े, लेकिन जो बाहर से, लेकिन वो छिले हुए, बाहर से उनको दुख हो, बाहर से उनको दुख है, लेकिन अंदर उनके अंदर आत्मिक फल है, उनके अंदर प्रेम भरा पड़ा है, उनके अंदर दया भरी पड़ी है। और उन्होंने क्या प्रार्थना करी है? हे परमेश्वर को तू क्या कर, क्षमा कर, क्या कर, हे परमेश्वर को तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना करने के जो तरीके हैं उसको लेकर एक अच्छा उदाहरण है। और यीशु मसीह ने जब हमको चुन लिया है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ गया, ये बात को समझ ले कि यीशु मसीह ने हमको अपना पवित्र लहू बहाकर हमें उसने बना लिया, हमको उसने अपना प्रिय पुत्र बेटी, हमको अपना बेटा बना लिया है। और यीशु मसीह मैं आपसे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारे बीच में कोई है, यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य कीमती लहू बहाकर आपको अपनी बेटी और आपको अपना बेटा बनाना चाहता है। उसको कुछ चाहिए ना, उसको कुछ चाहता नहीं है आपसे, कुछ वो मांगता नहीं है, वो चाहता अपना हृदय हम उसको दे दें, अपना जीवन उसको दे दें। अब जो हो सकता है अभी पहले, जो हो सकता है हमारी जो प्रार्थना करने का तरीका हो वो अलग हो, लेकिन प्रभु चाहता है हमारी जो प्रार्थना करने का तरीका हो वो कैसा हो, बहुत ही दया से भरा। इस बात को समझते अपने आप को बदलाव करते हुए, दूसरों को बदलना नहीं है, किसको बदलना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूसरों को बदलने वाली प्रार्थना करते हैं, हमारी ऐसे प्रार्थना होती है ना कि हमारी खुद को लेकर ऐसे प्रार्थना हो, प्रभु मुझको बदले, क्या करें। तो तीन बातें हमने यहां पर देखी। पहली बातें, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए, विषय किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम कैसे प्रार्थना करना है, बिगर हिम्मत हारे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, बिगर हिम्मत हारे, बिगर हियाव छोड़े हमें क्या करना है, लगातार कैसे जहाज दे दे नहीं। जो भी हमारी व्यक्ति का, जो भी हमारी परिवार की, जो भी दिनचर्या की, जो भी प्रार्थना, उन तमाम बातों के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, अगर आप, दूसरी बात जो है, हमें कौन सी प्रार्थना से सावधान रहना है, खुद को, हम सब जानते हैं हमारे अंदर ऐसी ऐसी बात अगर है तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, परमेश्वर भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए खुद को धर्मी ठहराने वाली प्रार्थना से हमें क्या रहना है। तीसरी जो प्रार्थना है, ये कौन सी प्रार्थना है, अपने आप को बदलने वाली, कौन सी प्रार्थना, अपने आप को बदलने वाली प्रार्थना। और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह जो यहां पर सब आए, प्रभु यीशु मसीह हम सबके अंदर अपना अमन, अपनी शांति हम सबके अंदर भरे और अनंत जीवन के लिए हमें से हर एक को, हम, मेरी यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों के पापों को तो क्षमा कर, और जब तेरा आना हो, हमारी कलीसिया के हर एक बच्चे, हर एक बच्चे, हर एक टीनेजर, हर एक जवान, हर एक परिवार, हर एक कपल उस अनंत जीवन में प्रवेश करे, मेरी प्रार्थना रहती है। और मेरी अभी भी ये प्रार्थना है, जिसको प्रभु ने नहीं चुना है, प्रभु की शांति, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आए, और आए क्यों ना प्रार्थना में जाएं। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, आप दयालु हैं। यदि हमारे बीच में कोई ऐसे भाई, ऐसी बहन है जिनको प्रार्थना करना नहीं आता है, प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं प्रभु। और यदि हमारे बीच में कोई ऐसा भाई, ऐसी बहन है जो खुद को धर्मी ठहराने वाली बातें यदि उसके अंदर है, खुद को अच्छा समझने वाली, दूसरे को बुरा समझने वाली बातें यदि उसके अंदर है, उससे बात करें, उसके हृदय को बदलें, ताकि वो अपने आप को बदलने पाए प्रभु। और यदि किसी के अंदर यह एहसास नहीं कि वो पापी है, प्रभु उस पर दया करें, दया करें प्रभु। धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।